हेलो फ्रेंड, मैं पूजा भारती भागलपुर से बोल रही हूँ। मैं किताब के पन्नों में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है द बीट। शरद काल की अंधेरी रात थी। बूढ़ा साहूकार अपने अध्ययन कक्ष में एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगा रहा था और उसके दिमाग में यह बात पुनः याद आ रही थी कि 15 वर्ष पहले शरद काल में ही उसने एक प्रतिभोज का आयोजन किया था। अतिथियों में कुछ विद्वान और पत्रकार ही नहीं थे। ज्यादातर लोगों ने प्राण दंड का अनुमोदन नहीं किया। उनमें से कुछ ने सोचा कि मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। मेजबान ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना अनुभव यह है कि न तो प्राण दंड और न आजीवन कारावास। मेरी राय में तो कारावास के जीवन से प्राण दंड ज्यादा नैतिक और मानव उचित है। फांसी तुरंत मार डालती है और आजीवन कारावास थोड़ा थोड़ा करके जान लेता है। अतिथियों में से एक ने कहा, वे दोनों बराबर रूप से अनैतिक है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है, किसी की जान लेना। राज्य कोई ईश्वर नहीं है, इसे जान लेने के अधिकार नहीं है, जिसे चाहने पर यह दे नहीं सकता है। उनके साथ एक वकील भी था जो 25 वर्ष का युवक था। जब उसने उनसे राय मांगी गई तो उसने कहा, प्राण दंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक हैं, लेकिन यदि मुझे इन दोनों में चुनना हो तो मैं दूसरे को चुनूंगा। इस कहानी का अगला भाग मैं सुनाने जा रही हूँ। किसी तरह जीवित रहना नहीं रहने से ज्यादा अच्छा है, अर्थात मर जाने से अधिक अच्छा है कि किसी प्रकार जीवित रहा जाए। योजना पूर्वक तर्क वितर्क आरम्भ हो गया। साहूकार जो उम्र में छोटा और ज्यादा घबराया हुआ था, अचानक गुस्से में आ गया और टेबल पर जोर से मुक्का मारा। वकील की ओर मुड़कर वह जोर से चिल्लाया, यह झूठ है, मैं 20 लाख की बाजी लगाता हूँ, तुम 5 वर्ष से भी जेल की एकांत कोठली में नहीं रह सकते हो। वकील ने जवाब दिया, यदि आप इसे गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो मैं बाजी लगाता हूँ कि मैं 5 वर्ष नहीं 15 वर्ष वहाँ ठहरूंगा। साहूकार जोर से चिल्लाया, 15 वर्ष हो गया, मैं 20 लाख की बाजी लगाता हूँ। वकील ने कहा, मान लिया तुम 20 लाख की बाजी लगाते हो या दाव पर रखते हो, मैं अपनी स्वतंत्रता को दाव पर रखता हूँ। इस तरह यह असभ्य और हास्यास्पद से बाजी लग गई। साहूकार जिसके पास उस समय कई लाख रुपए थे, बड़ा खुश हुआ। रात के भोजन में के समय उसने वकील से मजाक में कहा, युवक ज्यादा देर होने से पहले होश में आओ, 20 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 3-4 अच्छे वर्ष गवा दोगे। मैं 3-4 वर्ष इसलिए कहता हूँ कि तुम ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते हो। इस बात को भी मत भूलो कि स्वेच्छा से लिया गया कारावास बाध्य किए गए कारावास से ज्यादा बेझिल होता है। और अब साहूकार अपने कमरे में घूमता हुआ इसे याद किया और अपने इसके अनुसार 14 नवंबर 1870 के 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 के 12 बजे तक ठीक 15 वर्षों तक उसे वहाँ रखने की बाध्यता थी। इन शर्तों को थोड़ा सा भी उल्लंघन करने का प्रयास करने या समय से 2 मिनट भी पहले भाग निकल जाने से साहूकार 20 लाख से रूबल चुकाने की बाध्यता से मुक्त हो जा सकता था। कारावास के प्रथम वर्ष जब तक उसके विवरण या लिखे शब्दों से पता चलता है, वकील को भयानक एकांता और उचाट या ऊब का कष्ट झेलना पड़ा। उसके कारावास के उस भाग से दिन रात पियानो की आवाज सुनाई पड़ती थी। उसने शराब और तंबाकू अस्वीकार कर दिया। प्रथम वर्ष में वकील को सरल चरित्र की पुस्तकें उलझनदार प्रेम से संबंधित उपन्यास, अपराध और स्वपन चित्र की कहानियाँ और सुखांत नाटकों को दिया गया। द्वितीय वर्ष में पियोनो की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ने लगी और वकील ने मात्र पुरातन साहित्य की मांग की। पांचवे वर्ष में फिर संगीत का स्वर सुनाई पड़ने लगा और कैदी ने शराब की मांग की। जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने यह बताया कि उस पूरे साल में वह खाया पिया और अपने बिछावन पर पड़ा रहा। वह प्रायः जवाई लेता और अपने आप से बड़े क्रोध में बातें करता। उसने पुस्तक नहीं पढ़ी। कभी कभी रात में वह लिखने के लिए बैठ जाता। वह बहुत दूर तक लिखता रहता और सवेरे में उसे फाड़ देता। कई बार उसे रोता सुना गया। छठे वर्ष से दूसरे अग्र भाग में वह कैदी बड़े उत्साह से भाषाओं, दर्शन और इतिहास का अध्ययन करने लगा। वह इन विषयों पर इतना टूट पड़ा है कि उस साहूकार को उसके लिए पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध कराने का समय भी नहीं मिलता था। चार वर्षों की अवधि में उसके अनुरोध पर उसे 6 पुस्तकें दी गई। 10वें वर्ष के बाद में वकील अपनी टेबल के सामने बिना हिले डुले बैठा रहता और मात्र बाइबिल के नव विधान को ही पढ़ते रहता। साहूकार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति 4 वर्षों में 600 पांडित्यपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन कर विशेषज्ञ हो गया है, वह एक पतली पुस्तक जिसे समझना आसान है उसे पढ़ने में 1 वर्ष लगा दिया बाइबिल के नव विधान के स्थान पर। उसके बाद उसे धर्मशास्त्र और ब्रह्म विज्ञान का इतिहास दिया गया। कारावास के अंतिम 2 वर्षों में कैदी ने अव्यवस्थित रूप से बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया। अब वह प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तत्पर हुआ। उसने बायरन या शेक्सपियर का अध्ययन किया। उसके यहाँ से रसायन शास्त्र और सौर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कोई कई उपन्यास और दर्शन शास्त्र था। धर्म विज्ञानों पर पुस्तकों की मांग की जाने लगी। ऐसा लगता था मानो वह उसी प्रकार अध्ययन कर रहा जैसे समुद्र में टूटे फूटे टुकड़ों के बीच में वह तैर रहा हो और अपने जीवन को बचाने की अभिलाषा से वह एक टुकड़े के बाद दूसरे टुकड़े को पकड़ रहा हो। साहूकार ने इन सबों को याद किया और सोचा कल 12 बजे वह आजाद हो जाएगा। कारनामे के अनुसार मुझे 20 लाख से चुकाना होगा। अगर मैं चुका देता हूँ तो मेरा सब समाप्त हो जाएगा। मैं सदा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। 15 वर्ष पहले उसके पास करोड़ों गिनने को थे, लेकिन अब उसे यह सोचकर भय होता है कि उसके पास पैसा ज्यादा है या कर्ज ज्यादा है। अब वह एक मामूली महाजन था और बाजार में प्रत्येक उत्थान पतन से कांप उठता था। निराशा में अपने सिर को पकड़े हुए उस बूढ़े आदमी से बुदबुदाकर कहा, इस बागी को अभी साफ ही कहेंगे, वह आदमी मर क्यों नहीं गया? वह तो मात्र 40 वर्ष का है, वह मेरा अंतिम फार्थिंग मुझसे ले लेगा, विवाह करेगा, जीवन का आनंद लेगा। मैं एक ढाई भिखारी की तरह उसकी ओर देखूंगा और प्रतिदिन कुछ शब्द उससे सुनूंगा। जिंदगी की इस खुशी के लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मुझे कुछ मदद से करने दो, नहीं यह बहुत अधिक होगा। दिवालियापन और अपमान से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि उस आदमी को मरना चाहिए। घड़ी में 3 बजे थे। साहूकार सुन रहा था। घर में सब सोए हुए थे। खिड़की के बाहर आवाज करने की कोशिश करते हुए अपनी अलमारी से दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 वर्षों से नहीं खोली गई थी। उसने अपना ओवरकोट पहन लिया और घर से बाहर चला गया। बगीचे में अंधकार छाया था और बहुत ठंडा था, वर्षा हो रही थी। आज शरीर में प्रवेश करने वाली हवा बगीचे में खींच रही थी और पेड़ों को आराम नहीं दे रही थी। उद्यान भाग में पहुंचने पर उसने संतरी को दो बार बुलाया, कोई उत्तर नहीं आया। यह स्पष्ट था कि वह संतरी बुरे मौसम के कारण पौधा घर या रसोई घर में कहीं सोया हुआ था, जहां उसे बुरे मौसम से आश्रय मिल जाए। बुरे आदमी ने सोचा, यदि मुझमें अपने इरादे को पूरा करने का साहस है तो शंका तो सबसे पहले उस प्रहरी पर होगी। अंधकार में वह टटोलता हुआ सीढ़ियों और दरवाजों तक पहुंचा और उद्यान के उस भाग में हाल में प्रवेश किया। उसके बाद संकीर्ण मार्ग में प्रवेश किया और एक दिया सलाई की काठी जलाई। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बिना बिछावन के एक खाट खड़ी थी और एक लोहे का स्टोव। अंधकार में कोने में धुंधला दिखाई पड़ रहा था। दरवाजे का सील जिससे होकर उस कैदी के कमरे में जाया जा सकता था, अभी तक टूटा नहीं था। कार में कोने में धुंधला दिखाई पड़ रहा था। दरवाजे का सील जिससे होकर उस कैदी के कमरे में जाया जा सकता था, अभी तक टूटा नहीं था। जब दिया सलाई बुझ गई तो उस बूढ़े आदमी ने उत्तेजना से कांपते हुए खिड़की कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती धुंधले प्रकाश में जल रही थी। कैदी स्वयं टेबल के निकट बैठा था। केवल उसकी पीठ, उसके सिर के बाल और उसके हाथ दिखाई पड़ रहे थे। खुली हुई किताबें टेबल पर बिखरी थी और टेबल के निकट दरी पर दो कुर्सियां थी। 5 मिनट बीत गए और कैदी एक बार भी नहीं हिला डुला। 15 वर्षों के कारावास ने उसे गतिहीन रूप से बैठने के लिए सिखा दिया था। महाजन ने अपनी उंगली से उसकी खिड़की पर खटखटाया, लेकिन कैदी ने उत्तर में किसी तरह की गतिविधि नहीं दिखाई। उसके बाद साहूकार ने बड़ी सावधानी से दरवाजे की सील तोड़ दी और ताले में चाबी डाल दी। जंग लगे हुए ताले में कर्कश आत्म नाद सुनाई पड़ी और दरवाजा में चरमराहट की आवाज हुई। साहूकार ने तुरंत आशा की आश्चर्य की आवाज या चलने की आवाज होगी। 3 मिनट बीत गए। अंदर उतना ही शांत था जितना पहले था। उसने प्रवेश करने का निश्चय किया। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था जो किसी साधारण आदमी की तरह नहीं था। यह तो कंकाल नजर आता था। चमड़े तने हुए औरत की तरह सिर पर लंबे घुंघराले बाल और झब्बेदार दाढ़ी थे। उसके चेहरे का रंग सुखाव की तरह पीला था। उसके बाल ढके हुए थे। उसकी पीठ हाथ जिस पर वह अपना केश भरा सिर रखे हुए था इतना पतला और लड़खड़ा रहा था कि उसे देखना पीड़ादायक था। उसके बाल उजले हो गए थे और कोई भी विश्वास नहीं करता कि वह मात्र 40 वर्ष का है। टेबल पर जिस पर वह अपना सिर नवाए हुए था एक कागज का टुकड़ा रखा था जिसमें छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। साहूकार ने सोचा, यह बेचारा शैतान सोया हुआ और उसने अपने स्वप्न में शायद लाखों देख रहा है। इस अर्धनीत व्यक्ति को उठाकर सैनिकों को फेंक देना है ताकि ये से एक क्षण उसका गला दबा देना है और उसके बाद अति सावधानी से परीक्षण द्वारा भी आप प्राकृतिक मृत्यु का कोई पता नहीं लगा सकेगा। लेकिन जो उसने यहाँ लिखा है उससे पहले पढ़ ले। साहूकार ने टेबल पर से उस कागज के टुकड़े को उठा लिया और पढ़ा, कल 12 बजे आधी रात को मैं मुक्त हो जाऊंगा और लोगों से मिलने का अधिकार प्राप्त कर लूंगा, लेकिन इस कमरे को छोड़ने के पहले और सूर्य को देखने के पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना आवश्यक समझता हूँ। अपनी विवेक से और ईश्वर के सामने जो मुझे देख रहा है, मैं तुम्हारे लिए घोषणा करता हूँ कि मुझे आजादी से इस जीवन से, इस स्वास्थ्य से या सभी चीजों जैसे जिसे तुम्हारी किताबें संसार का वरदान कहती है घृणा है। 15 वर्षों तक मैंने इस पार्थिव जमीन का अध्ययन किया है। सचमुच मैंने न तो पृथ्वी को देखा है न लोगों को, लेकिन तुम्हारी किताबें में ही मैंने सुगंधित शराब हिरण और जंगली सुअर का जंगलों में शिकार किया और औरतों से प्रेम किया। तुम्हारी किताबों ने मुझे ज्ञान दिया। शताब्दियों से सृजित मानव विचार मेरी खोपड़ी में दब गए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम सबों से ज्यादा बुद्धिमान हूँ और मुझे तुम्हारी पुस्तकें संसारिक वरदानों और ज्ञान बुद्धि सबों से घृणा है। सारी चीजें काल्पनिक है। यद्यपि तुम घमंडी बुद्धिमान और सुंदर हो सकते हो, लेकिन इस पृथ्वी से तुम्हें भी मृत्यु सदा के लिए मिटा देगी। जिस तरह से जमीन के अंदर के चूहे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा इतिहास और तुम्हारे प्रतिभाशाली लोगों की अमरता इस भूमंडल के साथ ही जलकर भस्म हो जाएगी। क्योंकि सचमुच में तुम जैसा जीवन जी रहे हो उससे मुझे घृणा है। इसमें मैं 20 लाख रुपये छोड़ रहा हूँ जिसे मैंने स्वर्ग के रूप में देखा था और जिससे मैं अब घृणा करता हूँ। मैं अपने अधिकार से अपने को वंचित कर सकूँ इसलिए मैं 5 मिनट पहले यहाँ से अनुबद्ध काल से पहले बाहर निकल जाऊँगा और कारनामे का उल्लंघन करूँगा। जब उसने इसको पढ़ा, साहूकार ने उस कागज के टुकड़े को टेबल पर रख दिया। उस विचित्र आदमी के सिर को चूमा और रोने लगा। वह उस भाग से बाहर चला आया। जीवन में शायद कभी अपने से इतनी घृणा उसे नहीं हुई थी जैसा अब हो रहा था। घर आकर वह अपने बिछावन पर लेट गया और आंखों से बहते आंसू उसे काफी समय तक सोने नहीं दिए। दूसरे दिन सवेरे बेचारा पहरेदार दौड़ता हुआ उसके निकट आया और उससे कहा कि उन लोगों ने उस आदमी को खिड़की से नीचे उतारकर उद्यान में आते देखा है। जो उस भाग में रहता था वह द्वार तक गया और लापता हो गया। साहूकार तुरंत अपने नौकरों के साथ उस भाग में गया और उस कैदी के निकल भागने की बात को सत्य पाया। अनावश्यक अफवाह से बचने के लिए उसने टेबल पर पड़े उस कागज को ले लिया और अपनी अलमारी में बंद कर दिया। तो आप लोग बताना नहीं भूलिएगा कि मेरा यह कहानी आप लोगों को कितनी पसंद पड़ी। कृपया करके मुझे यह बताइएगा जरूर कि आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी या खराब लगी। थैंक यू, धन्यवाद।